स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। तो श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन आरम्भ करेंगे। पत्रस की दूसरी पत्री प्रारंभिक मसीहों के एक विशाल समुदाय के नाम लिखी गयी थी और इस पत्री की प्रमुख चिंता का विषय झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है, वो ज्ञान जो उन लोगों द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने स्वयं मसीह यीशु को देखा है और उनकी शिक्षाओं को सुना है। विभिन्न रूप से ज्ञान शब्द इस पत्र में 12 बार उपयुक्त हुआ है। सत्य ज्ञान पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि इस पत्र में झूठी शिक्षा का कड़ा विरोध किया गया है। पूरे पत्री में ये बात प्रकट की गई है कि सत्य ज्ञान का स्रोत मसीही जीवन का मार्गदर्शक तो परमेश्वर का वचन ही है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम लोग पुराने नियम की पुस्तक आमोस से अध्ययन कर रहे थे और हमने उस अध्ययन का समापन किया है और आज हम अपने अध्ययन को नए नियम की पुस्तक से दूसरे पत्रस की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम एक साथ मिलकर दूर दूर रहते हुए भी आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करने पाए और आपके प्रेम में उन्हें बढ़ाने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं। आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें अपनी शांति दे, उनके जीवन की जरूरतों को आप में होकर के पूरा करें, ताकि हर एक का विश्वास आपकी ओर होने पाए, वे जानने पाए कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और इतना ही नहीं, वे आप पर भरोसा रखने पाए। आज अपने अध्ययन पर हम सबों को आशीष दे, हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम नए नियम में से दूसरे पत्रस की पत्री को आरंभ करेंगे। इस पत्री का लेखक शमौन पत्रस है, जैसा कि अध्याय एक पद एक से स्पष्ट होता है। तथापि नए नियम की अन्य किसी भी पुस्तक की तुलना में इस पुस्तक के लेखक के विषय सबसे अधिक मतभेद रहा है। वर्षों पूर्व डॉक्टर डब्ल्यू जी मूरहेड ने लिखा था, पत्रस की दूसरी पत्री अपनी वास्तविकता के लिए किसी भी पुस्तक की तुलना में हमारे पास सबसे कम ऐतिहासिक प्रमाण के साथ आती है। तथापि इस चुनौती के कारण रूढ़िवादी इस पत्री पर पर्याप्त ध्यान देने पर विवश हुए और आज यह प्रमाणित हो चुका है कि पत्रस ने ही इस पत्री को लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने अध्ययन में बाइबल की पुस्तकों के लेखकों और अन्य विवादित विषयों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे लिए पत्रस की दूसरी पत्री भी परमेश्वर का वचन है, जिसके भीतरी और बाहरी प्रमाण बहुत हैं। क्योंकि लोग यह न कहें कि मैं इस पुस्तक के लेखक के विषय उठाए गए प्रश्नों से अनभिज्ञ हूं, हम इस विषय और तथ्यों पर ध्यान दें। पत्रस की दूसरी पत्री लंबे समय कलीसिया द्वारा धर्मशास्त्र का एक भाग मानी गई है। उसे सन 372 की लौदीकिया की सभा में भी स्वीकार किया गया था। इसके बाद सन 397 में कार्थेज में कलीसिया द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया गया था कि इसे धर्मशास्त्र में स्वीकार किया जाए, परंतु अरामी भाषा के धर्मशास्त्र में इसका नाम नहीं है, तो अरामी भाषा का संस्करण वैसे भी स्वीकार्य नहीं है। उसमें अन्य अनेक बातें ऐसी हैं कि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अतः उसमें पत्रस की दूसरी पत्री का न होना अर्थहीन नहीं है। इशुफियस आरंभिक कलिसियाई पितरों में से एक ने दूसरे पत्रस की पुस्तक को विवादित पुस्तकों में रखा था। ओरिजन ने इसे स्वीकार किया था, सिकंदरिया के क्लेमेंट ने भी इसे स्वीकार किया था, उसने तो इस पर टीका भी लिखी है। पत्रस के प्रकाशित वाक्य में दूसरे पत्रस का संदर्भ है, परंतु वह धर्मशास्त्र की मान्य पुस्तकों में नहीं है। यहूदा की पत्री पत्रस की दूसरी पत्री से संदेश ग्रहण करती है और प्रकट करती है कि यहूदा इससे भली भांति परिचित था। पत्रस की दूसरी पत्री से अनेक आरंभिक कलीसियाई लेखकों ने उद्धरण दिए हैं, जैसे अरिस्टाइट, जस्टिन शहीद, आइरेनियस और रोम का क्लेमेंट आदि। मार्टिन लूथर ने भी इसे स्वीकार किया था। जॉन कॉल्विन ने संदेह अवश्य व्यक्त किया, परंतु इसे अस्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियों, इस प्रकार आपको इस पत्री की पृष्ठभूमि को जानना अवश्य है, और इससे पत्री की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त आपको होती है। अतः कुछ विचारकों द्वारा इसे स्वीकार न करना मान्यता नहीं रखता है। इसके भीतरी प्रमाण अनेक हैं, जैसे आत्मकथा संबंधित उदाहरणार्थ दूसरा पत्रस 1:3-14, 1:16-18, 3:1, जिनसे स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पत्रस ने ही इस पत्री को लिखा था। पत्रस ने अपनी पत्री के तुरंत बाद ही इस पत्री को लिखा था। सन 66 में दूसरा पत्रस 3:1 हमें बताती है कि वह उसके शहीद होने के कुछ समय पूर्व ही लिखा गया था। दूसरा पत्रस 1:13-14 में हम इसे देखते हैं। पत्रस की दूसरी पत्री दूसरा तिमोथियस के समान विलाप गीत है। इन दोनों पुस्तकों में प्रकट समानताएं हैं। दोनों पत्रियों में कलीसिया की तीर्थ यात्रा में उस समय के परमेश्वर त्याग और हमारे समय के भी पर चेतावनी का चिन्ह लगाते हैं। उस समय जो मनुष्य के हाथ घास का एक बादल था, आज संपूर्ण आकाश को ढांक चुका है और आंधी ला रहा है। पत्रस शिक्षकों में झूठे संदेश की चेतावनी देता है और पौलुस अयाजकीय वर्ग में झूठी शिक्षाओं की चेतावनी देता है। मेरे मित्रों, पत्रस और पौलुस दोनों ही अपनी आने वाली मृत्यु के विषय आनंद प्रकट करते हैं। दूसरा पत्रस की पत्री 1:13-14, दूसरा तिमोथियस 4:6-8 में हम देखते हैं। पौलुस कहता है कि वह अपने आने वाले कूच करने के समय को जानता है। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वह जीवन की दौड़ दौड़ रहा था, अब वह अपनी दौड़ समाप्त करने पर है। उसने अच्छी कुश्ती लड़ी है और विश्वास की रखवाली की है। उसके लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। आप पत्रस की दूसरी पत्री में ऐसा ही विजय का स्वर सुनेंगे, क्योंकि वह भी अपनी मृत्यु को देख रहा था। मेरे मित्रों, दोनों प्रेरित कलीसिया को धर्मशास्त्र पर आधारित करते हैं, क्योंकि विधर्म की आने वाली आंधी से बचने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सुरक्षा है। अतः इसमें संदेह नहीं कि बैरी ने पत्रस की दूसरी पत्री पर वार किया है। यह पत्री बैरी के तीरों को रोकने के लिए एक सर्वोत्तम ढाल है। दूसरा पत्रस और दूसरा तिमोथियस की समानताएं पहला पत्रस और पहला तिमोथियस में विषमताओं की भी व्याख्या करते हैं। दूसरी पत्री का विषय पहली पत्री से भिन्न हो गया है, अतः उनमें अंतर भी वैसा ही है जैसा रोमियो की पत्री और तिमोथियस की पत्री में है। दूसरा पत्रस में हम देखते हैं कि विधर्म का अपमान हो रहा है, आंधी आ रही है, हम इसका सामना करने की तैयारी कैसे करें। पत्रस कहता है कि एक ही मार्ग है और वह ज्ञान का मार्ग है। प्रभु यीशु में विश्वास ही नहीं करना, केवल उसमें आस्था ही नहीं रखना है, परंतु उसे व्यक्तिगत रूप से जानना भी आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:3 में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें उसे जानना है, केवल उसके बारे में ही नहीं जानना, परंतु उसे व्यक्तिगत रीति से जानना है। मैंने एक प्रचारक के बारे में पढ़ा कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना कलीसिया की स्थापना करना चाहता है। वह परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना कुछ भी आरंभ कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु के बिना मसीही सेवा का कोई भी काम आरंभ नहीं कर सकता है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको प्रभु यीशु को जानना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु को जानना और उसके बारे में जानने में महान अंतर है। कई लोग प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं परंतु प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। यही भूल हम में से कई लोग भी आज कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस पत्री का मुख्य विषय धर्म त्याग ही नहीं हमारा बचाव भी है, अर्थात हमारा ज्ञान। यह ज्ञान कहाँ है और हमारे पास कैसे आता है? पत्रस कहता है कि यह ज्ञान केवल परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है। दूसरा पत्रस की पत्री 1:19 में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद् वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मसीही जीवन जन्म ही नहीं विकास एवं उन्नति है। इस पत्री का मुख्य पद है दूसरा पत्रस 3:18। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। मैं सदा यही कहता रहा हूं कि मैं बाल विशेषज्ञ हूं, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ संसार में बच्चा लाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे रेडियो कार्यक्रम के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जबकि मैंने यह सेवा इसलिए आरंभ की थी कि विश्वासी प्रभु यीशु के विश्वास में उन्नति करे। अतः मेरा काम है कि नवजात विश्वासियों को वचन का दूध पिलाऊं और फिर उन्हें ठोस आहार खिलाऊं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के बिना आप विधर्म के इस युग में निर्वाह नहीं कर सकते। पत्रस का विषय यही है। इस पत्री का विषय उन शब्दों पर आधारित है जिनका उपयोग उसने पहली पत्री के विपरीत काम में लिया है। प्रथम अध्याय में एक शब्द 2 आया है, वह एक महत्वपूर्ण शब्द है, विश्वास। परंतु दूसरी पत्रिका जो गुणवाचक शब्द है वह है ज्ञान, और समानांतर अर्थ वाले शब्दों में 16 काम में आया है। इसकी प्राकाष्ठा अंतिम पद में दिए गए निर्देश से प्रकट है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। यही सच्चा ज्ञानवाद है। पत्रस कहता है कि सच्चा ज्ञान प्रभु यीशु को जानना है। जी हाँ, जब तक आप प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं आप उसकी संगति में नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस पत्री के 1 में प्रवेश करते हैं। इसका विषय है मसीही अनुग्रह विश्वास दिलाता है। धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों की पूर्ति से दृढ़ ठहरता है। जैसा मैं प्रस्तावना में कह चुका हूं कि यह पत्री पत्रस का मरण गीत है, दुखद गीत है। यह पत्र विश्वासियों के लिए पत्रस के क्रूसीकरण के पूर्व के अंतिम वचन है। वह आने वाले धर्म त्याग की चेतावनी देता है और विशेष करके शिक्षकों में झूठी शिक्षा और वह पाठकों के विश्वास को धर्मशास्त्र में आधारित करना चाहता है, क्योंकि आने वाली आंधी में एकमात्र सुरक्षा यही है। जी हाँ, इस अध्याय के प्रथम 14 में हम देखेंगे कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु का ज्ञान वह आधार है जिस पर विश्वासी का चरित्र निर्माण होता है। आइए हम देखें, मसीही अनुग्रह विश्वास दिलाता है। दूसरा पत्रस की पत्री 1:1 में लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। यहां पर लिखा है बहुमूल्य। यह शब्द पत्रस का है। वह अपनी पहली पत्री में अनेक बार इसे काम में ले चुका है। धर्मशास्त्र के लेखकों में एकमात्र वही है जो इस शब्द को उसके अर्थ में काम में लेता है। यह ऐसा है जैसे किसी के पत्र में उसकी लिखाई को पहचानना। बहुमूल्य शब्द को यहाँ देखना ऐसा है जैसा पत्रस के हस्ताक्षर को देखना। कहता है शमौन पत्रस, वह अपने नाम से इस पत्र का आरंभ करता है। शमौन उसका जन्म का नाम है और पत्रस अर्थात चट्टान नाम उसे प्रभु यीशु ने दिया था। इस पत्री में वह अपने दोनों नाम को लिखता है, शमौन एक दुर्बल मनुष्य और पत्रस एक बलवंत मनुष्य है। मेरे प्रियो, वह दोनों ही था। इस समय तो निश्चय ही वह एक चट्टानी मनुष्य है जो प्रभु यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ने को तैयार है। लिखा है शमौन पत्रस, मसीह यीशु का दास और प्रेरित। दास का अर्थ है बंधुआ दास। वह कलीसिया में बड़ा स्थान नहीं ले रहा है। जी हाँ, वह अपने आप को बंधुआ दास कहता है। प्रेरित अर्थात उसका अधिकार। देखिए, वह अपने आप को प्रेरितों में एक कहता है, बड़ा प्रेरित नहीं कहता है। तब हम पढ़ते हैं हमारे समान बहुमूल्य विश्वास। यह एक अद्भुत बात है विश्वास। जी हाँ, विश्वास से उसका अर्थ है सत्य का निकाय अर्थात सुसमाचार। उसके कहने का अर्थ है कि उन्होंने विश्वास को ग्रहण तो किया है, अब वे उसके साथ क्या करेंगे यह उनके हाथ में है। वे जो यह मानते हैं कि उद्धार के पहले आपका चुना जाना आवश्यक है और परमेश्वर को आप में विश्वास जगाना है। मैं कुछ अंश इस बात को मानता हूं, परंतु मसीह को ग्रहण न करने का कारण वचन में दिया गया है। देखिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, आज तक जब मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जी हाँ, वह कहता है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। मेरे मित्रों, यदि आप विश्वास नहीं करते तो यह न कहें कि यह आपकी मानसिक समस्या है। सच तो यह है कि आप में पाप का अवरोध है। जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। आप जब तैयार हो जाएंगे तब परमेश्वर भी तैयार होगा और आपका उद्धार होगा, नया जन्म होगा। परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि कोई भी नाश हो। आज की स्थिति यह है कि जो इच्छा रखता है वह आए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, यह हर एक व्यक्ति के लिए है जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना पुत्र उसने दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह आपसे बस विश्वास करने को कहता है। वह यह भी नहीं कहता कि आप नहा धो करके आए। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो वह आपको शुद्ध कर देगा। पत्रस यहां पर कहता है बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। कैसे? हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। मसीह यीशु में उद्धार का विश्वास करने पर यह धार्मिकता हमें दे दी जाती है। वह हमारे पाप ही नहीं धो देता, अपनी धार्मिकता भी वह हमें दे देता है। हम मुक्त अपराधियों के समान नहीं हैं। हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने के लिए मसीह यीशु में हियाब है, भरोसा है, विश्वास है। उस प्रिय में स्वीकार्य है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी यीशु पर विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पाएं, धार्मिकता को प्राप्त करें, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही प्रभु यीशु के पास आएं, उस पर विश्वास करें कि वही आपके पापों के लिए मरा है, उसने आपके पापों की सजा उठा ली है और आपके बदले में उसने कोड़ों की मार सही है। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आता है और आपके जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करता है, और इसीलिए कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सारी खताएं